आज का हमारा विषय है इमोशनल इंटेलिजेंस, और इस वंडरफुल विषय को लेने के लिए हमारे समक्ष आ रहे हैं वंडरफुल डायनामिक पर्सनालिटी डॉक्टर गिरीश भाई. लेट्स गिव हिम अ वेरी बिग हैंड. डॉक्टर गिरीश भाई इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ मेडिकल विंग. वी लाइक टू कॉल अपॉन our chairpersons also to grace this dais. Dr. Devendra K. Gupta ji, HOD Pediatric Surgery, AIMS. Let's give him a very big hand. Shri Baba Alexander ji, Founder Secretary of NCDC, Thiruvananthapuram. Can we please have him on stage also? Now I would request our sisters to please welcome the guests with bouquet and badges. तालियां बजाते रहेंगे, क्योंकि जब हम तालियां बजाते हैं तो सुनाने वालों को भी अच्छा लगता है और हम सभी सुनने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं. क्योंकि आप सभी जानते होंगे किसी भी सेशन की सक्सेस है दो चीजों से. कोई बताना चाहेगा क्या दो चीजें चाहिए जो सेशन को सक्सेसफुल बना सकती हैं? एक तो आपके जैसे चात्रक ऑडियंस और एक हमारे वंडरफुल स्पीकर्स. तो आइए हम आमंत्रित करते हैं उस परम पिता परमात्मा को, और दो घड़ी हम उसकी याद में बैठेंगे और फिर से वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होंगे. हु एम आई? मैं कौन? आवाज नहीं आई? नहीं, मजा नहीं आया. मैं कैसी आत्मा? पीसफुल आत्मा. मैं कैसी आत्मा? आई एम एन एंजेलिक सोल. आई एम द बेस्टोअर ऑफ लव, पीस एंड ब्लिस इन दिस वंडरफुल वर्ल्ड. आइए उस वापस अपनी यात्रा पर चलते हैं. दो मिनट फिर से हम चेक करेंगे कि इस मानस पटल पर क्या चल रहा है और उसको फिर से साइलेंस में ले जाएंगे. ओम शांति.
उसको प्यार कर.
We'll now request Dr. Girish Patel to share his experience talk on emotional intelligence. Dr. Girish Patel.
ओम शांति। सभी एक बार खड़े हो जाएंगे। हाँ, एक एक पार्टनर बनाइए। सर यहाँ आइए। देखिए सर मेरे पार्टनर। हाँ, पार्टनर बनाइए, इसे फेस टू फेस खड़े हो जाइए। हाँ, करना है, कुछ सीखना है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है आपको बताता हूँ। हाँ, प्रैक्टिकल टेक्निक इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, वो जो सर की और खड़े अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करेंगे, जो मेरी और खड़े खोल के दिखाओ। हाँ, जो मेरी और खड़े खोल के दिखाओ। कुछ करो, उनको मुट्ठी को खोलो। हाँ, कुछ भी करना है करो, मुट्ठी को खोलो। अच्छा बैठिए, थैंक यू। क्या बैठ जाइए, क्या प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। यार आप में से वॉइस नहीं क्लियर है अभी, पीछे साइड। अब क्लियर है। आप में से अधिकतर फोर्स करके अपने पार्टनर की मुट्ठी को खोलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। किसी ने सोचा, आप कहते भैया खोल दे, तो खोल देता। हाँ, फोर्स करने की जरूरत नहीं थी। आप ये भी युक्ति अपना सकते थे कि हम अच्छे मित्र है, हाथ मिलाएंगे, तो भी आपका पार्टनर है मुट्ठी को खोल देता। तो सचमुच आज है ना, भी जैसे भी प्रेजेंट 21st सेंचुरी में सक्सेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नहीं, हम सब जीवन में आगे बढ़ना चाहते, हम चाहते हमारे बच्चे भी जीवन में कुछ कर दिखाए, आगे बढ़े, और हमें ये लगता है कि खूब मेहनत करनी पड़ेगी। परंतु इट्स नॉट हार्ड वर्क, इट्स अ स्मार्ट वर्क विच ब्रिंग सक्सेस। कहते इट इज नॉट अ हार्ड वर्क, इट्स अ शार्प वर्क विच ब्रिंग सक्सेस। तो यह सचमुच इमोशनल इंटेलिजेंस है। पहले तो मैं बताऊं कि यह शब्द कैसे आया। कि लोग ये कहते कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब इमोशनल बनना, है ना। इमोशनल बनना नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि हम सबके जीवन में ऐसी घड़ी आती है। एक्चुअली इमोशंस क्या है, इमोशंस अर्थात कि थॉट्स कलर्ड विथ फीलिंग्स। जिस थॉट्स में फीलिंग्स है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वह है इमोशंस। अभी ये इमोशंस को हम मैनेज कैसे करें, वहां कहा कि आप उस एरिया में कितने इंटेलिजेंट है। और ये जो सारा कंसेप्ट है वह एक प्रयोग के द्वारा फेमस हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में करीब 28 साल तक ये प्रयोग चला। कि वहां के जो रिसर्चर थे वो स्कूल्स में गए, प्राइमरी स्कूल्स में, और 5-5 साल के जो बच्चे थे, तो बहुत सारे बच्चों को मार्शमेलो नाम की एक मिठाई होती है ना, सभी बच्चों को मार्शमेलो एक एक मिठाई दे दी, और फिर कहा कि देखो अभी दो ऑप्शन है, एक तो चाहे तो आप मिठाई को खा लो, और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप आधा घंटा रुके, हम आधे घंटे के बाद वापस आएंगे, भी जिन्होंने इस मिठाई को नहीं खाई है उनको एक दूसरी मिठाई प्राइस के रूप में मिलेगी। तब बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि नहीं देते तो चलता, लेकिन अभी आपने हमको दे दिए और बोलते खाओ नहीं, तो ऑलमोस्ट 80% ने तो खा ली, परंतु 20% से कुछ तो किया, वहां छुपा के रख दी कहीं पे, आंखें बंद कर दी, डांस करने लगे, कुछ ना कुछ किया उन्होंने। कि जिनको था कि मुझे दूसरी एक मिठाई प्राइस के रूप में मिलनी चाहिए, फिर आधे घंटे के बाद आए वापस उनको वो प्राइस दिए। इस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में करीब 10,000 स्टूडेंट को दो भागों में बांटा गया। एक तो ऐसे कि जो उस टेम्पटेशन को रोक नहीं पाए, और दूसरे थोड़े से कि जो उस टेम्पटेशन को रोक पाए। अब 10 साल के बाद उनका कांटेक्ट किया गया, है ना, तो तब वह 9वीं 10वीं में ऐसे थे, तो फिर से देखा कि भाई जो आधा घंटा रुके थे वह उनका इमोशंस पे ज्यादा कंट्रोल था, उनकी पर्सनालिटी ज्यादा स्टेबल थी, उनके रिलेशनशिप भी अच्छे थे, और जो नहीं रोक पाए थे उनमें इमोशनल फ्लक्चुएशन था, वो जल्दी झगड़ा कर लेते थे, है ना, कुछ स्मोकिंग भी करने लगे थे। और 15 साल के बाद उनका संपर्क किया तो एकेडमिकली वो ग्रुप में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इस ग्रुप में से भी अगर 20% डॉक्टर बने तो उस ग्रुप में से भी 20% डॉक्टर बने, ऐसे मोर और लेस जो एकेडमिक परफॉर्मेंस था वह सिमिलर था, परंतु सक्सेस वॉज ट्रिमेंडसली डिफरेंट। जो अपने रिस्पेक्टिव एरिया में, चाहे वो बिजनेस कर रहे थे, कोई एडवोकेट बना, कोई टीचर बना, परंतु सक्सेस में बहुत बड़ा फर्क था। तो इसके आधार से वह निर्णय पर आए, और जिसको कहा गया है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन। ये केवल खाने की बात नहीं है, हर बात में, कि आपके मन में कुछ आए, अब भी कभी उसको जाके बोलती हूं, है ना, और हो सके तब आपने बोल दिया तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप एक दिन रुक गए और फिर कुछ युक्ति से वो अपनी फीलिंग बताई तो उसका पॉजिटिव प्रभाव होगा। तो ऐसे हर एरिया में कि जो अंदर में कोई बात आई कि जब जरूरत है उसको हम रोक पाए, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया में आपके साथ इनको भी डिस्कस करूंगा। तो ये कहा गया है कि अभी ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, या तो क्यों जरूरी है। सिंपली ये कहते हैं कि अगर आपकी आईक्यू अच्छी होगी तो आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, लेकिन प्रमोशन तब मिलेगा अगर आपकी ईक्यू भी अच्छी होगी। बिकॉज ऑफ आईक्यू यू आर हायर्ड, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ईक्यू यू आर फायर्ड। समझ गए? हाँ, तो हंसते क्यों नहीं है? तो इसलिए जो भी क्षेत्र में आपको, हमारे में वह इमोशंस को सही रूप से समझने की, मैनेज करने की क्षमता होनी चाहिए। और यह भी बात कही गई है कि यू नीड ईक्यू इन ऑर्डर टू यूज योर आईक्यू। आईक्यू अर्थात कि आप प्रॉब्लम सॉल्व अच्छा कर पाते, आपकी मेमोरी अच्छी है, मैथमेटिक्स में आप अच्छे हैं, परंतु जब ईक्यू अच्छी होगी, समझो आईक्यू अच्छी है तो आपकी मेमोरी अच्छी है, परंतु जीवन में सफल होना है तो सिर्फ याद रखने की जरूरत नहीं है, भूलने की भी जरूरत है। कि जो अनावश्यक है वो हमें भूलना चाहिए। जो व्यक्ति जंक को भूल नहीं पाता है, हाँ, वह भी तनाव में आता है, वह दुखी होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा एक अर्थ है, और सक्सेस के लिए जो मैंने बातें बताई उसके अलावा भी एक बात कही गई है कि इट्स नॉट हार्ड वर्क, इट्स अ टीम वर्क विच इज इंपॉर्टेंट। और आज आपको अगर दो लोग भी रिपोर्ट करते हैं, आपके अंडर में दो लोग भी है, तो वह भी एक टीम है। परिवार भी एक टीम है, तो जब वह टीम साथ में काम करेगी, एक दूसरे को सहयोग देंगे, तब ही परिवार में शांति और खुशहाली रह सकते हैं। और यही जहां पर भी आप जो भी क्षेत्र में काम करते हो, और टीम वर्क कैसे होता है कि आप जो पैसा देते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन इस पर भी रिसर्च हुई है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स की सैलरी बढ़ा दो तो कहते कि वो मोटिवेशन 8 सप्ताह ही चलता है। अगर उनको आप चाहते हो कि सदा के लिए वो मोटिवेटेड रहे, तो उनकी फीलिंग्स को समझना होगा, है ना। ऐसा कुछ करना होगा कि वह दिल से काम करे। अब तक भी काफी कॉर्पोरेट्स में, हॉस्पिटल्स में भी ये बात तो आ गई है कि ये वर्टिकल मैनेजमेंट नहीं हो सकता कि बॉस इज ऑलवेज राइट, है ना। आर्मी की तरह आप एक इंस्टीट्यूट को चलाओ तो ज्यादा नहीं चलेंगे। इट इज व्हाट इज कॉल्ड वर्टिकल मैनेजमेंट। और क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति वह काम करता है वह अच्छे से जानता है कि उसको कैसे करना है। तो जब वह दिल लगा के करता है, अपना समझ के करता है, तो वह काम अच्छे से होता है। तो यहां पर हमें और कुछ युक्तियां अपनानी पड़ेगी ना, उनको कोई अलग रीति से मोटिवेट करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, इतनी छोटी सी थियरी के बाद अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं। कल भी बताया था ना कि हमें इमोशनली इंटेलिजेंस बनना है तो प्रैक्टिकली क्या करना है। सबसे पहले छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करो, यहां ही स्टार्ट कर दो। जैसे कि मैं 10% कम खाऊंगा, सवेरे 1 घंटा साइलेंस रखूंगा, जो भी मेरे आसपास है मैं कॉन्शियसली उनको प्रेस करूंगा। आधा घंटा कम सोऊंगा, ना जो जो मुझे काम करने हैं उसका लिस्ट बनाऊंगा। आप खुद सोचिए कि आप नहीं करते, कुछ चीजें आप करते होंगे, परंतु जो आप नहीं करते हैं ऐसी छोटी छोटी चीजों का लंबा सा लिस्ट बनाइए। एंड स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स। जल्दी ही आप पाएंगे कि आप डिफिकल्ट भी काम करने लगे और अल्टीमेटली आप इम्पॉसिबल भी करेंगे। इम्पॉसिबल का स्पेलिंग क्या है? हाँ, इम्पॉसिबल का स्पेलिंग इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल, है ना। हाथ ऐसे करो करो करो, अरे धीरे करो। मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल तो आपको बोलना आई एम पॉसिबल, ठीक है। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, मेरा आवाज आपसे भी बड़ा है, इतने लोग बोलेंगे तो सारे शांतिवन में आवाज जाना चाहिए ना। इम्पॉसिबल, गुड। तो जब भी कोई बोले ना, कोई कहे कि इम्पॉसिबल, तो बोलो आई एम पॉसिबल। या तो कोई कहे इम्पॉसिबल तो उसका मतलब है कि मुझे ज्यादा फोर्स देना है। वह एक नजरिए से मुझे देख रहा है, मैंने पास्ट में जो काम किया है, जो कुछ मेरी कैपेसिटीज है उसके अनुसार शायद वह राइट है, परंतु अगर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट की, मैंने और कुछ किया तो पॉसिबल हो जाएगा। मनोविज्ञान में यह बात पूरी तरह से मानी गई है, इफ यू चेंज द वे इन विच यू लुक एट द पर्सन यू लुक एट चेंजेस। समझे? हाँ, सोचना। कि जब हम लोगों को देखते हैं, है ना, उसका एंगल बदलते हैं तो जिस व्यक्ति की ओर आप देख रहे हैं वही बदल जाता है। तो बस यह काम हमें भी करना है। और अगर कोई हमें डीमोटिवेट करता है तो यह सोचो कि बेशक उसका एंगल कुछ एक है, मैं अपना एंगल चेंज करूंगा तो वह हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप। अब कहते कि अगर हम अपने आप को थोड़ा पुश करें तो हमारे में ट्रिमेंडस शक्ति है ना। आपने भी देखा होगा कि कोई पुश करता है तो हमारे में शक्ति होती है। कोई क्यों पुश करे, हम ही अपने आप पर थोड़ा सा दबाव डालें। इमोशनल इंटेलिजेंस बनना अर्थात कि मन, बुद्धि और संस्कार को अच्छे से मैनेज करो। यहां पर बात आ रही है संस्कारों की। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, उसको अपनी बेटी की शादी करानी थी। उसने सोचा कि पैसा तो खूब है परंतु मुझे ऐसा सन इन लॉ चाहिए कि जो बहुत ही बहादुर हो। तो उसने एक ऐलान किया कि मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है ना, उसमें मैं 3 मगरमच्छ को छोड़ दूंगा और जो नौजवान उस स्विमिंग पूल में एक कोने से दूसरे कोने तक तैर के बताएगा ना और इन मगरमच्छों से बचा रहेगा तो उससे बेटी की शादी करूंगा। तो उस दिन ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए, है ना। जब उसने कहा स्टार्ट, तो एकदम सन्नाटा छा गया। कोई स्विमिंग पूल में जंप मारने को तैयार नहीं। थोड़ी देर के बाद भिशुम, एक लड़का पानी में बहुत बहुत तेजी से तैरता तैरता उस ओर निकल आया। लोगों ने खूब तालियां बजाई। उसने भी कहा कि जरूर मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुमको ढेर सारे पैसे दूंगा। जब ये सब हो रहा था, वो लड़का यहां वहां देख रहा था। उसने कहा वो सब बाद में देखेंगे, पहले मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जिसने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का मारा। क्योंकि किसी ने धक्का मारा, अभी दूसरा रास्ता था ही नहीं। समझ गए, हमें अपने आप को थोड़ा पुश करने की आप आदत डाल दो हर बार और आप पाएंगे वंडर्स कैन हैपन। और इंपॉर्टेंट बात है, कमिंग टू लिटिल मोर डीपर थिंग, देखो हाँ थोड़ा भी ध्यान से सुनना पड़ेगा इस बात को, यहां वहां नहीं देखो। इट्स नो वेरी डीप डीप साइकोलॉजी, मैं आपको एकदम जल्दी से बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल कि कहीं भी आपके रिश्तों में दरार है, से फॉर एग्जाम्पल उससे आप थोड़े दुखी है ना, थोड़ी डिस्टर्ब है और आप देखते हैं कि ये कैडबरी खाता हूं ना तो अच्छा लगता है, तो आपने कैडबरी खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई कि भी मुझे अच्छा लगता है। ऐसा आप इतनी कैडबरी खा लेते कि पेट में ब्लॉटिंग हो जाएगा, माथा भारी हो जाएगा, तो उल्टा आपका प्रॉब्लम और बढ़ा। आपकी वो जो डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड थी वो अच्छी नहीं हुई और बढ़ी। और जब तक आप वो रिश्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। समझ रहे ना, ये तो सरल सा एग्जाम्पल है परंतु और बहुत सारी बात है। देखो आज शराबी भी ऐसे ही बनते, जो अल्कोहलिक्स है उनको ये लगता है कि मैं शराब पी, उनमें ना अंदर में एक वैक्यूम है, उनको लगता है कि मैं शराब पीता हूं तो शायद वो भर जाता है, लेकिन वो भरता नहीं, अंदर डालते जाओ उल्टा डिस्टर्ब होता है। फिर ये एडिक्शन बढ़ता है, कहीं भी कम नहीं होता है। तो हर बात में इसको समझो, क्योंकि रियल लाइफ में प्रोग्रेस कब होता है, जब इनसाइड आउट अप्रोच होता है। आज हम आउटसाइड इन करने की कोशिश करते हैं कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहन लिया, मैं ब्यूटी पार्लर में जाके आई तो मुझे अच्छा लगेगा। परंतु जब तक अंदर से आपका स्वमान नहीं बढ़ता है, एक करोड़ रुपए का ड्रेस भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। और इनसाइड आउट है, जैसे भी अंडे के ऊपर दबाव डालो तो क्या होगा, अंदर में जीवन है वह मर जाएगा, परंतु अंदर में जो जीवन है वो बाहर की ओर फोर्स दे के अंडे को तोड़ देता है, तो क्या होता है, क्या होता है, लाइफ प्रोग्रेस होती है। तो ऐसे ही हमें यहां जो कुछ भी आप सीख रहे हैं दो दिनों से, ना सोचिए कि वो जो अच्छी ये छोड़ नहीं दोगे, अरे ये तो सब यहां ठीक है, भी प्रैक्टिकल में नहीं होता है। मुझे प्रैक्टिकल में उन बातों को अंदर से डेवलप करना है, मुझे वर्च्यूज को डेवलप करना है, मुझे क्वालिटीज को डेवलप करना है, मुझे माइंड पावर को डेवलप करना है, तो अल्टीमेटली वो डेफिनेटली होगा। और ये भी माना गया है कि अगर कोई भी चीज पर अगर आप 17 सेकेंड भी कॉन्सेंट्रेट करते हो तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। कितना, 17 मिनट नहीं, 17 सेकेंड। और क्योंकि हम 17 सेकेंड भी फोकस नहीं होते हैं, इसके कारण हम सक्सेसफुल नहीं होते। देखो ये भी ना, ध्यान से सुनना, कुछ अच्छी बातें तो लिख भी लो। When you shift your focus, the thing on which you focus shifts. समझे, सोचो क्या था, When you shift your focus on a thing, the thing on which you focus shifts. शिफ्ट योर फोकस। आज तक शायद आपका फोकस यह था कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, आपका फोकस था कि मुझे ज्यादा फेमस होना है ना, मुझे प्रमोशंस मिलने चाहिए। नाउ शिफ्ट योर फोकस, इस पर फोकस करो कि मुझे अंदर से डेवलप होना है। वो थ्री इडियट का डायलॉग मालूम है क्या, कि कामयाबी को नहीं काबिलियत पर ध्यान दो, मुझे वह मेरी क्वालिटीज को इंप्रूव करना है ना, वर्क ऑन दैट है ना। वो थोड़ा सा उसमें मेहनत है, बट अल्टीमेटली व्हाट वी अचीव इज ग्रेट, तो इसलिए वहां पर फोकस करना। और छोटी छोटी सी बातें इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि दो चीजें बहुत ही डिस्टर्ब करती है व्यक्ति को। एक तो अगर आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, आपने किसी को दुख दिया है ना, तो वह बोझ लेकर के हम घूमते हैं, कह रहे मैंने इसको बुरा व्यवहार किया, मैंने बेटे पे गुस्सा कर दिया। और दूसरा है, अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है तो वह भी हमें डिस्टर्ब करता है ना, कि उस व्यक्ति को अभी हम कैसे बदला ले, और सोचते रहते हैं। तो अब ये दोनों बातों से मुक्त होना है तो एक पावरफुल टेक्निक है, सबको करनी है, खाया ना, बोलना, अरे तो धीरे से बोलते, खाना नहीं खाया, अच्छा सर यहां आइए, फटाफट आओ, एक एक खड़े हो जाओ फिर से, नहीं नहीं प्रैक्टिकल करेंगे तो होगा, ऐसा थोड़ी होने वाला। हाँ देखो, फिर से पार्टनर लीजिए, हाँ एक एक पार्टनर, हाँ सोचो ये जो पार्टनर वह वही है जिस व्यक्ति को आपने दुख दिया है ना, अभी वो बोझ को खत्म करना है। हाँ तो सभी मैं करूंगा, ऐसा करेंगे, प्रॉमिस, अच्छा देखो उनको बोलो सॉरी मैंने आपको दुख दिया, ऐसे नहीं, मैं बोलू ऐसा करेंगे सर? हाँ अच्छे से बोलना, ऐसे नहीं है, बोलो सॉरी मैंने आपको दुख दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। करिए करिए, गले मिले तब तक छोड़ूंगा नहीं मैं, करो करो करो। या प्लीज बैठिए, या प्लीज सिट डाउन। देखो अभी तो झूठ मूठ का किया, कईयों ने तो किया ही नहीं। हाँ परंतु जैसे अभी ये सेशन पूरा हो तो सचमुच करना है। सबके पास मोबाइल है ना, जैसे सेशन पूरा हो ना तो अभी याद करो कि किसको मैंने दुख दिया था। हाँ मोबाइल फोन करना और सचमुच, ऐसे नहीं कि मुझे माफ कर दो, सचमुच बोलो, बेटे को बोलो बेटे मैंने तुम्हारे पे परसों गुस्सा किया था, मैं अभी यहां सेशन में हूं, मुझे रियलाइज हुआ है कि ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर। आप देखना वंडरफुल रिजल्ट मिलेगा। या तो व्यक्ति कहेगा नहीं 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 कोई मुझे तो याद भी नहीं कि आपने कुछ किया था, वह व्यक्ति हंसने लगेगा, हो सकता है रोने भी लगे, तो भी माफ कर दिया। वो ये भी बोलेगा कि भी चलो कोई बात नहीं है, तो मैं भूल गया। आप देखेंगे 99% अच्छा रिजल्ट, सिर्फ 1% पॉसिबिलिटी है कि वह उसका कुछ गलत अर्थ निकाले और बार बार आपको याद दिलाए कि देखो तुमने गलती की थी ना, तुमने माफी मांगा, तुम बुरे हो। तो देन डिटैच, नहीं ये हो सक, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है नो, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन है ना, आप डिटैच कर दो, उनको बोलो कि भी उसका भाव कुछ पॉजिटिव था, आप तो नेगेटिव ले रहे, फिनिश। 99% आपको अच्छा रिजल्ट मिलना है जिससे वो बोझ खत्म हो। अभी दूसरी बात और भी तकलीफ देने वाली कि किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है ना, किसी ने आपको दुख दिया है और उसको आप भूल नहीं पाते, वो इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना चाहिए? बस थोड़ा डिफिकल्ट है, परंतु उसका बस एक ही रास्ता है कि उसको माफ कर दें। क्यों लोग कहते नहीं 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 सारी दुनिया को माफ कर दूंगा, ये बंदे को माफ नहीं करूंगा। तो सच बताता हूं, बहुत एटलीस्ट मैंने 3-4 तो अभी अभी एक केस देखा है, उसको हार्ट अटैक आया और रीजन वॉज क्लियर कट, सचमुच उसके साथ अन्याय हुआ था मान रहे, लेकिन जो अन्याय हुआ था वो उसको भूल नहीं पा रहा था, माफ नहीं कर पा रहा था। तो बात यह है कि जो हमें माफ करना इसलिए नहीं कि उसने कुछ अच्छा काम किया, शायद तो माफी देने के योग्य ही नहीं, परंतु फिर भी क्योंकि हमें उसके बुरे प्रभाव से डिटैच होना, और जब तक मैं डिटैच नहीं हो पाऊंगा वो नेगेटिव इफेक्ट होती रही, कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी। तो इसलिए मुझे उसे बिना कोई शर्त के माफ करना। देखो आंखें बंद करो, हाँ याद करो ऐसे 2-3 व्यक्तियों को कि जिसने आपके जीवन में विघ्न डाले, जिसने आपके जीवन में समस्याएं क्रिएट की, बिना कोई शर्त के उन्हें माफ कर। इसलिए माफ करो क्योंकि जो उसका बुरा प्रभाव आप पर पड़ रहा है उससे मुक्त होना जरूरी है। जब तक आप उससे मुक्त नहीं होंगे ना, सदा के लिए शांति नहीं मिल सकती। बिना कोई शर्त के मैं पूरी तरह से उन्हें माफ कर देता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे हल्कापन चाहिए। अच्छा आंखें खोलो। हम माफ किया, किसने किसने माफ किया? चलो मैं ताली बजाता हूं, इतने सारे माफ कर। और एक दिन पर्याप्त नहीं कहेंगे, 8 सप्ताह तक करते रहो, क्योंकि जब वो अनकॉन्शियस में कुछ डीप जाता है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आपको भी चलो माफ नहीं कर सकते, तो भी कुछ लॉजिक दो, क्योंकि बुद्धि तर्क को समझती है। भी कोई फायदा नहीं है, तो हो गया। ये जो मैं किस्सा भी बोल रहा हूं, आपको बता नहीं सकता हूं वो किस्सा, परंतु वो एक सिंपल सी बात थी कि भी उसने कुछ गलती करके वो एग्रीमेंट्स प्रॉपरली नहीं बनाए। नहीं, अभी वो एग्रीमेंट्स प्रॉपर नहीं बने तब तो बोलते हैं कहां एग्रीमेंट में लिखा है ना। नाउ लीगली ऑल्सो यू कांट डू एनीथिंग। तो ये फ्यूचर के लिए अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि भाई मुझे कोई भी बात है वो प्रॉपर वर्ड टू वर्ड एग्रीमेंट को पढ़ने कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बट नाउ इट इज गॉन। और ऐसा भी कुछ मैंने उनको समझी भी, बहुत बड़ा नहीं, भले है बड़ा है, छोटा सा नहीं है, बट स्टिल यू हैव रिसोर्सेज टू सर्वाइव। वो जो हार्ट अटैक आ गया, उसके बदले आप पीसफुली अगर उसको भूल जाते और जो भी रिसोर्सेस में जीते, तो शायद कंफर्टेबली अपना जीवन व्यतीत कर लेते। तो इस प्रकार से तर्क से अपने आप को, और बार बार, क्योंकि जब इमोशंस आते हैं ना, वो नेगेटिव फोर्स ही ज्यादा है। तुम जो छोटा सा भी तर्क ढूंढ निकालो और पॉजिटिव फोर्स को लाओ, उसको रिपीट करो, लिखो कई बार, तो सोचने में तुरंत नकारात्मक आएगा। अच्छा देखो, और एक सिंपल सी टेक्निक है, ये थोड़ा हायर की बात की, अभी जो टेक्निक बताता हूं वो लोअर लेवल पर काम करेगी, परंतु आप थोड़ा ट्राई करो तो जरूर काम करेगी। सर यहां आएंगे, आइए आइए आइए, देखो अच्छा है ना, स्टेज पे आएंगे तो कुछ लोगों लोग भी आपको पहचानेंगे। ओम शांति। देखो एक छोटी सी गेम है, क्योंकि मैं बोलूंगा ना वो आप भूल जाएंगे, वो बात आपको मैंने बोली ना, वो डीप है लेकिन लोग भूल जाते उसको ना, कुछ एक्टिविटी की होगी तो याद रहेगा। हाँ देखो, अभी गेम में आपको क्या करना है, कहीं वाक्य बनाने, जैसे कि भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, बहन ने चश्मा पहना है, ऐसा बहुत कुछ, घड़ी में 4:40 ऐसा, मैं कहूं बाबा तो स्टॉप,
अच्छा
वो वाक्य आपका कट हो गया। फिर दूसरा वाक्य बोलना है, उसको रिपीट नहीं करना है, दूसरा वाक्य आपको बोलना है, ठीक है? हाँ, और ये शब्द मैंने क्यों चुना, क्योंकि बहुत, जैसे मराठी में जो महाराष्ट्र से है, बाबा मतलब पिताजी, गुजरात में बाबा मतलब बेटा, गुरु को भी बाबा बोलते ना, रामदेव बाबा। तो भाई बहुत सारे मीनिंग है, आपको जो मीनिंग है वो चूज करो। ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा जो निराकार है, यानी कॉस्मिक एनर्जी है, उसे शिव बाबा कहा गया, ठीक है? तो इसलिए मैंने बाबा शब्द चूज किया। हाँ हाँ, ओके, हाँ स्टार्ट बाबा।
योग
बाबा,
घड़ी
बाबा,
ये
बाबा। हाँ देखो क्या हुआ, अगर उनको फ्रीडम देते तो इतनी देर में 10 वाक्य बनाते, परंतु काट रहे थे तो विचार ही कम हो गए,
सही
हाँ, नए विचार नहीं आए। ये गेम को ज्यादा खेलो ना तो लोग स्टेज छोड़ के नीचे बैठ जाते कि भाई आप काट रहे हो हमको। तो ऐसे ही जब भी वो नेगेटिव इमोशंस आए, है ना, कोई भी ऐसी बात आए तो तुरंत क्या करो, बाबा उदाहरण देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, किसने आपको क्रिटिसाइज किया, तो मन में आया क्यों क्रिटिसाइज किया, नहीं करना चाहिए, मैं भी मौका ढूंढूंगा, ऐसा करूंगा बाबा, तो रुक गया। और आप अच्छे से करो तो दूसरी बार जब आएगा उसने क्यों क्रिटिसाइज किया बाबा, और अच्छे से करो उसने बाबा, और आप अच्छे से करो, विचार आने से पहले आएगा बाबा बाबा, वो सचमुच मैंने किया है। हाँ, मैं प्रैक्टिकली सब जो भी बोल रहा हूं सब किया है प्रैक्टिकली,
पड़ता है।
तो स्पेशली स्टार्ट विथ स्मॉल थिंग्स टू कट योर नेगेटिव थॉट। या प्लीज से
थैंक यू,
थैंक्स अ लॉट, शांति। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस की और कुछ छोटी छोटी बातें है ना, दो प्रकार की, पहले नेगेटिव लेते फिर पॉजिटिव। कि किसी ने कुछ हमें बोल दिया, आपका इंसल्ट कर लिया सपोज, तो एक तो ये पहली बात तो ये सोचनी है कि अगर उस इंसल्ट में 1% भी सत्य है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, भले उसने उसको 70% बना दिया है, तो 1% तो मैं चेंज करूं तो मेरा प्रोग्रेस है। दूसरा ये भी संभव है कि उसमें 1% भी सत्य नहीं है, तो ये सोचिए कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है। एक पूरा कहा गया है सैडिस्टिक पर्सनैलिटी, कि जो व्यक्ति को दूसरों को दुख दे करके अच्छा लगता है ना, दूसरों को नीचा दिखा करके वो अपने आप को बड़ा समझता है, परंतु सच पूछो तो वह एबनॉर्मल है। हो सकता है उसको टेम्पररी कहीं मान मिल जाए, टेम्पररी अच्छा लगे उससे, परंतु अंदर में तो वह खोखला है। तो उस पर क्या करो, दया का भाव करो। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, जो पेशेंट आते उनको कहता हूं देखो आप ये क्लिनिक से भी नीचे उतरेंगे, आप नीचे गए तो 3-4 वॉचमैन बैठे हैं, एक वॉचमैन ऐसा 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 कुछ कुछ आपको इशारा करते हैं, तो क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप उसको जाके मारने जाएंगे, लेकिन दूसरा वॉचमैन बोलेगा कि मैडम ये तो पागल है। नहीं तो आप क्या करेंगे है ना, गुस्सा तो समाप्त तो हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है आप कहेंगे डॉक्टर के पास जाओ, पैसे नहीं है मैं देती हूं, ट्रीटमेंट करा के लो इसकी। तो क्या हुआ, उस पर दया आई जब पता चला कि रीजन क्या था। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें आपको इंटरनल रीजन को समझ लो तो उल्टा आपको दया आएगी। और अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी हो ना, तो YouTube में मेरी बहुत सारी वीडियोस है, एक ऐप भी है, गूगल प्ले में डॉक्टर गिरीश पटेल टाइप करना, वो फ्री ऐप है, एक पैसा आपको देना नहीं। हाँ, उसमें करीब 300-400 वीडियोस है, हाँ उसको देखना, आपको नई नई टेक्निक्स मिलेगी। अच्छा, अभी अंत में देखो आपको एक पावरफुल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, हाँ इट्स द मोस्ट पावरफुल, वेरी वेरी डीप थिंग। एक तो समझना है फिर प्रैक्टिस करनी है। अब हम इमोशनली डिस्टर्ब क्यों होते हैं, क्योंकि ना जीवन में कुछ घटनाएं हैं कि जो हमें कंट्रोल कर रही है ना, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं कि जो इस जन्म के भी हो सकते हैं, पास्ट बर्थ के भी हो सकते हैं। अब वह क्या करेंगे कि भी रस्सी की तरह आपको खींच रहे, अब उससे मुक्ति प्राप्त करनी हो तो यह एक पावरफुल टेक्निक है। देखो टाइम कम है, यहां वहां नहीं देखो, सब अरेंजमेंट हो जाए, मेरे साथ करो। तो छोटी सी प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी संवेदना आपको चेहरे पे होती है, जैसे खुजलाने का मन हो रहा है, कुछ घूम रहा है, कहीं कुछ ठंडा लग रहा है, मामूली दर्द हो रहा है, ज्यादा नहीं, ऐसी कोई भी एक संवेदना को चूज करो और फिर एकदम डिटैच होकर के उसे देखो, एकदम साक्षी होकर के उसको देखो कि न कुछ अच्छा है न बुरा है, जैसा है वैसा है, वो संवेदना को रहना है तो रहे, जाना है तो जाए, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। समझ गए? हाँ, ओके, क्लोज योर आईज। एक कोई भी संवेदना को चूज करो, एकदम डिटैच होकर के उसे देखते रहो कि ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, रहना है तो रहे, जाना है तो जाए, मुझे उसके साथ कोई संबंध नहीं। एकदम डिटैच होकर के देखो। जितना भी समय रहे कोई बात नहीं, मैं जस्ट उसको वॉच कर रहा हूं, उसको एनालाइज नहीं करता हूं। लेट इट बी देयर। आंखें खोलो। क्या हुआ? और संवेदना रही कि चली गई? चली गई। देखो, अगर आपने ठीक से किया होगा ना तो चली गई। जो लोग डिटैच नहीं हो पाए रही है, क्योंकि मुश्किल होता है कि क्योंकि थोड़ा भी खुजला क्यों आया, खुजलाने का क्या हो गया, हम उससे न्यारे नहीं हो पाते। अगर आप न्यारे हो गए ना तो चला जाए। थोड़ी अब देखो प्रैक्टिस करना, और फिर ये बार बार करने की, अगर आपको इसकी डेप्थ में जाना है, जो सारी टेक्निक है कि जिसमें अंदर से हमें अपने आप को विकसित करना है, तो एक सेंसेशन चला गया, दूसरा लो चला गया, तीसरा लो चला गया, आपको मजा आएगा कि भी तो कुछ जादू हो गया, मेरे पास कोई टेक्निक आ गई। कि कोई भी सेंसेशन है, अगर मैं एक साक्षी भाव डेवलप करता हूं, डिटैच होता हूं, तो चली जाती है। अब इसकी गहराई क्या है कि अगर आप, अब ये करना पड़ेगा प्रैक्टिस सचमुच, कि जो भी जीवन में अनकॉन्शियस में जो प्रॉब्लम्स है वो कभी ना कभी बाहर आते हैं। आपने खुद अनुभव किया होगा कि अभी आप अच्छे भले हैं, बैक पेन हो गया, आप आराम से बैठे, छाती में जलने लगा, कुछ हुआ नहीं है, तो वास्तव में वो या डिप्रेस्ड हो गए कभी, वो अनकॉन्शियस की मेमोरीज ऊपर आ रही है। और तब अगर ये अभ्यास हो कि मैं साक्षी भाव से डिटैच होकर के उसको देखता हूं, और समाप्त हो जाती है। बार बार करो ना तो उसका इन्फ्लुएंस भी समाप्त हो जाएगा। जब हम एनालिसिस करते क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, तो वह समाप्त नहीं होता है। आप देखना ऐसे भी कि रास्ते में कोई पागल है, वो आपको कुछ बोलता है, आप उसको जवाब देते तो और भड़कता है। अब देखना, उसको जो बोलना है बोल, आप खड़े रहो तो खुद समझ जाएगा और चला जाएगा। तो ऐसे ये हमारी अनकॉन्शियस जो इंप्रेशंस है उसके बारे में, भले बहुत गहरी टेक्निक है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया, अगर गहराई से समझना है आप वीडियोस देखना, उसमें आपको सारी टेक्निक मिलेगी। अच्छा देखो, अभी इमोशनली इंटेलिजेंस बनने का मैं आपको एक मेडिटेशन कराना चाहता हूं। हाँ, कल शाम को भी कराया था तो अच्छा लगा था ना, है ना, डिफरेंट है, सभी मेरे साथ करना। हाँ, करेंगे? अच्छा, कमर को सीधी रख के बैठिए, दोनों पैरों को जमीन पे रख दीजिए थोड़ी दूरी पर, हाथों को ऐसे मोड़ लेना है, कंधे को भी ढीला कर दो, आंखें बंद कर सकते हैं, बस अपने विचारों को ही वॉच करिए कि अंतर मन में क्या विचार आ रहे हैं। जैसे ही आप अंतर मन के विचारों को न्यारे होकर के देखते हैं, तो विचारों की गति शांत हो जाती है। अब आप मन को मोड़ सकते हैं, यह सोचिए कि आज छुट्टी का दिन है, आप सवेरे उठे हैं, स्नान आदि करके आप तैयार हो गए हैं और आपने सोचा है कि नजदीक में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर आपको ऊपर जाना है, तो कुछ आवश्यक सामग्री लेकर के आप पहाड़ी की ओर निकलते हैं। जैसे वो पहाड़ी की बीच में पहुंचते हैं, छोटा सा जंगल है, बहुत अच्छा लगता है, वातावरण की खुशबू का भी आप आनंद ले रहे हैं। जैसे आप वो पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं तो आप पाते हैं कि एक बहुत ही जगमगती चीज वहां पर पड़ी है। जब आप उसको उठाते हैं तो पाते हैं कि बहुत ही कीमती हीरा है, उस पर मिट्टी लगी हुई है। जैसे ही आप हीरे की मिट्टी को दूर करते हैं, वह हीरा प्रकाश देने लगता है। बस इसी से आपको याद आता है कि मैं आत्मा भी एक कीमती हीरा हूं, मैं आत्मा बहुत ही कीमती हीरा हूं, जिस पर नेगेटिव विचारों की, नेगेटिव इमोशंस की मिट्टी लगी हुई है, उसे दूर कर देता हूं तो मैं प्रकाश से भरपूर हूं, मेरी कीमत बहुत बढ़ जाती है। बस एक एक नई जानकारी मिल गई कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं। आप और पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, और पहाड़ी पर ऊपर चढ़ते हैं, और थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक स्थान पर बहुत ही सूर्य की कोमल किरणें आ रही है। आप चाहते हैं कि वही पत्थर पर मैं बैठ जाऊं, वहां बैठ जाते हैं और वह सूर्य की किरणों का आनंद ले रहे हैं। वह सुबह की कोमल किरणों से आपको बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा भी ज्ञान सूर्य है, परमात्मा की ज्ञान की किरणें हमें अति इंद्रिय आनंद का अनुभव कराती है। परमात्मा के ज्ञान से हम शक्ति से भरपूर हो जाते हैं। थोड़ी देर आप वैसे ही बस परमात्मा की शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान है शिव पिता, मैं उनकी संतान शक्ति से भरपूर हूं। थोड़ी देर में एकदम रिफ्रेश हो गए, ऊर्जावान हो गए हैं, भी फिर से आप उठ करके और पहाड़ी पर ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाते आप देखते हैं कि कुछ जानवर भी वहां पर है, कांटे भी है, फिर भी संभल संभल करके आप ऊपर जा रहे हैं। जीवन भी ऐसा ही है, में संभल करके हमें आगे बढ़ना है। गम पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए हैं तो आप देखते हैं कि सामने दूसरी एक पहाड़ी है कि जहां पर तो सभी हरे वृक्ष है, वहां बहुत ही अच्छे अच्छे फल भी है, वहां कोई जानवर नहीं दिखाई देते। आप सोचते हैं कि मुझे उस पहाड़ी पर जाना चाहिए, मेरा जीवन भी ऐसा हो कि जहां अच्छे अच्छे फल हो,
मेरा जीवन भी ऐसा हो जहां बिल्कुल शांति हो, संबंधों में सुमधुरता हो। आप चाहते हैं कि जंप लगा के उस पहाड़ी पर चले जाए, परंतु रास्ते में बड़ी खाई है इसलिए आपको डर लगता है। तब आप परमात्मा को पुकारते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे उस पहाड़ी पर ले जाओ, मुझे बस वैसा ही जीवन चाहिए। जैसे आप परमात्मा को पुकारते हैं, एक फरिश्ता आता है जो आपको अपनी गोद में उठा करके पहाड़ी के उस पार ले जाता है। बहुत आनंद का अनुभव करते हैं, बिल्कुल सुरक्षा का अनुभव करते हैं। सुरक्षित वह फरिश्ता आपको दूसरी पहाड़ी पर पहुंचा दे कि जहां बहुत अच्छा वातावरण है, उस रसदार फल है, सब लोग गुणवान है, प्राणी भी एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं। आप भी गुणवान बन गए हैं, आप में सहनशीलता आ गई है, अपने और दूसरों के इमोशंस को मैनेज करना आपको आ गया है। थोड़ी देर यहां बस इसी पूरे वातावरण को एब्सॉर्ब करते हो कि मेरा जीवन सदा के लिए ऐसा ही बनेगा। और फिर धीरे धीरे आप वापस अपने घर पर आ जाते हो, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के आप वापस अपने घर आ गए हो। धीरे से आंखें खोलो। धीरे से आंखें खोली। यह छोटा सा अभ्यास, हाँ, कैसा लगा? ताली से बजाते क्योंकि ज्यादा नहीं, सार के रूप में कहेंगे कि जो भी सुना उसके बारे में सोचना, औरों को भी बताना, क्योंकि जब हम औरों को बताते हैं तब हमारा पक्का होता है। और आपकी कुछ बात हो, कुछ प्रश्न पूछने हो तो भी पूछ सकते, गूगल भगवान है ना, है डॉक्टर गिरीश पटेल टाइप करना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। यदि आपके कोई प्रश्न है और कोई बात हो तो भी आप संपर्क कर सकेंगे। ओम शांति।
थैंक यू सो मच गिरीश भाई फॉर द वंडरफुल वर्ड्स ऑफ विजडम। भाई साहब की एक खूबी है कि बहुत सहज करके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स भी सबको समझा देते हैं। एक बात जो हम हमेशा याद रखें, किसी महानुभाव ने बहुत सुंदर कहा है, जिंदगी को हमने कुछ इस कदर आसान कर दिया, जिंदगी को हमने कुछ इस कदर आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो भगवान भी हमें यही कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, क्यों अपने जहन में पुरानी बातें, बीती बातें लेकर के चलते हो। जैसे अक्सर डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि अगर आप पुरानी बासी पचा कुचा खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा एंड यू स्टार्ट प्यूकिंग। सिमिलरली अगर हम पुरानी बातें अपने जहन में लेकर चलेंगे तो आप देखिए, मन तो वही थोड़ा छोटा सा है, उसमें हम चाहें तो अच्छी बातें धारण करके उसको सुमन भी बना सकते हैं और चाहें तो हम उसको अजायब घर भी बना देते हैं। तो थैंक यू सो मच गिरीश भाई फॉर सच वंडरफुल small exercises, tools and techniques. And I would now like to request Dr. Gupta to share few words of it.
Om Shanti. आप सब ने डॉक्टर ग्रीश जी से प्रवचन, उनके सर्मन, उनकी एक्सपर्टाइज एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे सुना. उसको इंटरप्रेट करना है इटसेल्फ इज ए चैलेंज. मेरा ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत लंबा वास्ता तो नहीं है, कुछ टाइम पहले आया था, लेकिन उसके अनुभव से ऐसा लगा कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसी चीज है जो अभी पाना बाकी है. और यहां आके लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको उस डायरेक्शन में बहुत कुछ खाली जगह को भर सकती है. इसलिए मैं दोबारा आया और इस बार हमारी वाइफ है वो भी साथ में आए. आप सबने देखा होगा कि ये एक दुनिया अलग है. एक वो बहुत बिजी लाइफ, सुबह से शाम तक आप एक ग्रिल में फंसे हुए हैं. यहां आके आपको लगता है कि ये एक दुनिया में बिल्कुल पीस है, पीस है और पीस है. जिस चीज के लिए आपको एक जिंदगी के किसी पड़ाव पे बहुत जरूरी महसूस होती है कि उसकी भी जिंदगी में जरूरत है. आपने देखा होगा कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, वेरी इमोशनली, वेरी इंटेलिजेंटली, एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड एंड मैनेज्ड वेरी क्वाइटली, एफिशिएंटली एंड विद अ पर्सनल टच. आपको कहीं महसूस नहीं हुआ होगा कि कोई किसी को डायरेक्शन दे रहा है, कोई किसी के ऊपर शाउट कर रहा है कि आपने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, इसको ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए. द प्रोग्राम इज एक्सलेंट, स्पीकर्स आर टॉप क्लास, दे नो देयर सब्जेक्ट एंड दे डिलीवर देयर बेस्ट. The audience has been wonderful. They are participating to the best from their heart. And I'm sure such sermons, such events, they really contribute for not only growth of your personality, but also help making you a better citizen for the country. And so I wish to compliment the Brahm Kumari organization as an institution ke jinhone ek niswarth bhav se ye beeda uthaya hai ke is jindagi mein jitne tension hai, jitne kurtiyan hai, un sab ko piche chhod ke ek acche deshbhakt ki tarah aur ek acche bharatvarsh ke nirman ke liye और एक विश्व के लिए आप आगे बढ़े. बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब.
थैंक यू सो मच डॉक्टर गुप्ता. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सिस्टर्स टू फेलिसिटेट डॉक्टर गुप्ता फॉर बीइंग विद अस एंड शेयरिंग.
माय रोल हैज बीन वेरी लिमिटेड बट दैट इज योर मैग्नेनिमिटी.
थैंक यू सो मच सिस्टर्स टू कम एंड फेलिसिटेट डॉक्टर गुप्ता एंड वील गिव अ वेरी बिग हैंड एंड वी हैव अवर नेक्स्ट स्पीकर. A very charismatic speaker. I would be very happy to tell you about Shilu Didi. Inko Bhagwan ne Har Ki Paudi ke naam se nawaza hai. Na keval hum kahe vachan, lekin wo jo mukharvind se Bhagwan ki gyan ganga behti hai, wo bhi itni khoob ki kaise atmaon ke andar parivartan सहज आ जाता है. तो बहुत समय ना लेते हुए हम आमंत्रित करेंगे शीलू दीदी को और हम सभी एंजल्स फिर से अपना साइलेंस मेंटेन करेंगे. ओम शांति. थैंक यू सो मच.